क्योंकि सामने बैठा हुआ ये शख्स एक शैतान है, जो अगर प्यार से पेश आता है तो उसके साथ प्यार से पेश आओ, वरना अगर वो अपने शैतानी रूप में आ गया तो सबको जलकर राख कर देगा। मैं हमेशा तुम्हारा देखभाल करूंगा और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जो मेरी मलिका बनकर मेरे साथ तख्त पर बैठोगी। वादा करता हूं, किसी भी मुसीबत को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। रियाज ने एक ठंडे लहजे के साथ इनायत से ये कहा। इनायत हैरान नजरों से उसे देखने लगी। क्या रियाज उससे उसकी सुरक्षा का वादा कर रहा है? लेकिन तभी रियाज के कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ एक खतरनाक एक्सप्रेशन भी शामिल हो जाता है और वो इनायत की आंखों में देखकर कहने लगता है, किसी ने भी तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूं कि उसे शख्स का नाम दुनिया की हिस्ट्री से मिटा दूंगा। एक बार दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चल जाए तो उसके बाद तुम खुद अपनी पहचान को पहचानोगी और तुम्हें ये पता चलेगा कि दरअसल तुम्हारा नाम किसके साथ जोड़ा गया है। इसीलिए इस नाम के सम्मान को बचाने की जितनी जिम्मेदारी बाकियों की है उतनी तुम्हारी भी होगी। इनायत के चेहरे पर घबराहट आ जाती है और उसके माथे पर पसीना आने लगता है। रियाज ने अभी भी इनायत का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके हाथों में अब तक जो मौसम की ठंडक थी उसमें भी गर्माहट महसूस होने लगी थी और उसके हाथों में भी पसीने आने लगे थे। रियाज की बातों से उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आसपास की दुनिया घूमने लगी है और वो सांस नहीं ले पा रही है। ये सब इस वजह से नहीं था कि रियाज ने उसे ये सब कहा था, बल्कि इस वजह से था कि रियाज का ये कहना था अगर कोई उसे उससे दूर करेगा तो वो शख्स शायद अगले दिन का सूरज न देख पाए। और इसी के साथ अचानक से ही इनायत के दिमाग में जिब्रान का ख्याल आ जाता है। अगर रियाज को इसकी भनक लग गई तो वो सुन हो गई थी। उसका चेहरा बेजान हो गया था। उसे लग रहा था कि उसके आसपास की चीज चक्कर खाने लगी है। उसका सर घूमने लगा था रियाज की चेतावनी सुनकर, और इसी के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में जान ही नहीं है, वो किसी भी पल बेहोश हो सकती थी। रियाज ने पहले ही उसे वार्निंग दे दी थी कि उसे धोखा बर्दाश्त नहीं है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धोखा कभी नहीं, और अगर उसके किसी अपने ने उसे धोखा देने की कोशिश की तो रियाज उसकी हालत मौत से ज्यादा बदतर कर देगा। अचानक से रियाज अपनी जगह से खड़ा होता है और इनायत को खींचकर खड़ा करते हुए कहता है, रात काफी हो गई है और मौसम भी ठंडा हो गया है, चलो हवेली के अंदर वापस चलते हैं वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। रियाज की बातों से इनायत का शरीर अपनी जगह अकड़ गया था। उसके पूरे शरीर में झुनझुनी सी पैदा हो रही थी और वो चल नहीं पा रही थी। रियाज एक कदम आगे बढ़ा पर इनायत लड़खड़ाने लगी। उसे लड़खड़ाता देख रियाज ने जल्दी से उसे संभाल लिया और अगले ही पल उसे अपने गोद में उठा लिया। इनायत का हाथ रियाज के गर्दन पर लपेट जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से डरते हुए रियाज को देखने लगती है, पर रियाज ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। वो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ इनायत को अपनी गोद में उठाकर हवेली के अंदर जाने लगा। वो इनायत को उसके कमरे पर लाता है और बिस्तर पर लिटा देता है। वो उसके कोमल हाथों को सहलाता है और फिर उसके माथे पर चूमते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। इनायत, तुम बस मेरे लिए बनी हो, रियाज ने इनायत की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन इनायत को रियाज के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था रियाज ये बात कहे तो दिल से रहा था, पर इसमें साफ तौर पर एक धमकी छुपी हुई थी। शायद ये रियाज की जुनून की पहली सीढ़ी थी जिसे इनायत महसूस कर चुकी थी। रियाज ने इनायत के माथे को सहलाते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, पर कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, और अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ है तो उस बात को अभी इसी वक्त अपने दिल से निकाल दो। ये कहते हुए रियाज धीरे से इनायत के होंठों को चूमकर उससे अलग होता है। इनायत की धड़कनें अचानक से बढ़ गई थीं जब रियाज ने उसके होंठों को चूमा, पर रियाज ने उसे डिप किस नहीं की थी, बस हल्का सा उसे चूमकर उससे अलग होता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। इनायत हेडड्रेस से टिककर बैठी हुई थी, लेकिन तभी तकिए के नीचे रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर फोन निकाला तो कॉलर आईडी पर जिब्रान का नंबर था। जिब्रान की कॉल को देखकर इनायत का चेहरा खिल गया था। ये हर रात की बात है, हर रात जब भी इनायत वापस अपने कमरे में आती तो देर रात तक वो जिब्रान से बातें करती और उसके साथ दिन में जो कुछ भी हुआ वो बताती, लेकिन आज उसे बात करते वक्त बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। अगले दिन इनायत कमरे से निकलकर जब हॉल में आती है तो देखती है सारा परिवार हॉल में बैठा हुआ है और सामने एक बुजुर्ग शख्स है जिसकी लंबी सी दाढ़ी है और जिसने पठानी कुर्ता पहना हुआ है वो बैठा हुआ है। उसे देखकर इनायत समझ गई कि वो शख्स कौन है। वो शख्स हाफिजी मौलाना थे। रियाज अपने दादा जान के साथ एक तरफ बैठा हुआ था और रियाज के चाचा और चाची भी वहीं मौजूद थे। इसके साथ इनायत की अम्मी और उसके चाचा चाची भी वहां पर मौजूद थे। रियाज सामने सोफे पर अपने दोनों हाथ बांधकर बैठा हुआ था और रियाज के ठीक पीछे खड़ा था मुराद। जन्नत और अमल सोफे से थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। इनायत भी उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या बात है? जन्नत ने कहा, भाभी मौलाना साहब आए हैं आपके और भाईजान के निकाह की बात करने के लिए।
इनायत ने जैसे ही ये सुना उसका दिल थक सा रह जाता है। वो हैरानी से मौलाना साहब को देखने लगती है तो दादा जान कहते हैं, क्या बात है मौलाना साहब, जो भी बात है खुलकर बताइए। देखिए परिवार के सारे लोग यही मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चों की आने वाली जिंदगी में कोई मुसीबत आए। हम तो ये चाहते हैं कि रियाज और इनायत का निकाह आप ही पढ़वाएं। मौलाना साहब ने कहा, सैयद साहब मैं इसी बारे में आपसे बात करने आया था। दरअसल आपने ही कहा था कि आपके पोते का निकाह अगले हफ्ते होना था, पर अब ये निकाह अगले महीने होगा। मौलाना जी के ऐसा कहने पर सबकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और रियाज भी चौंक जाता है। वो जल्दी से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, अब अगले महीने निकाह क्यों होगा? क्योंकि लड़की के घर में अभी अभी उसके अब्बू का इंतकाल हुआ है और कम से कम नहीं तो 40 दिन तक शोक मनाया जाता है।